दंडोत बंदन अनक बार सर्व कला समरथ डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हथ ज्ञान ध्यान किछ करम न जाना सार न जाना तेरी सब ते वड्डा सतगुर नानक जिन कल राखी मेरी बेसुमार अथाह अगनत अतोले ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोले। ओम गुरुर् ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरः गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। साहेब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की हजूरी में उपस्थित गुरु की साजी निवाजी प्यारी साध संगत जी, गज के आखो वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। साहेब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज ने हम लोगों को सब दुखों की निवृत्ति के लिए और परमानंद परम सुख सुखमनि की प्राप्ति के लिए उन्होंने हमें धुर की वाणी आए तीन सगली चिंत मिटाई के अनुसार एक अनुपम भेंट साहेब श्री सुखमनी साहेब हम लोगों को प्रदान किए। जो व्यक्ति साहेब श्री सुखमनी साहेब जी का पाठ कीर्तन और किसी संत महापुरुष से कथा सुनता है वह व्यक्ति का लोक परलोक दोनों संवर जाता है। सबसे उत्तम हर की कथा है। उमा कहो मैं अनुभव अपना सत हरि भजन जगत सब सपना। भगवान शंकर अपनी पत्नी को कह रहे हैं हे उमा मैं अपना अनुभव तुम्हें सुनाता हूँ कि इस जगत में हरि का भजन हरि का कीर्तन ही सत्य है और यह जगत जो तुमको दिख रहा है ये मिथ्या है, सिर्फ प्रतीत होता है वास्तविक में नहीं है। ज्यों सुपना और पेखना ऐसे जग को जान। जिस व्यक्ति को गुरु की कृपा से ईश्वर की कृपा से ऐसा ज्ञान हो गया है वह व्यक्ति हर एक परिस्थिति में आनंदित होता है। उसके अंदर से काम क्रोध लोह मोह अहंकार विनष्ट जाता है। आज साहेब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज हम लोगों को उपदेश कर रहे हैं श्लोक काम क्रोध अर लोह मोह विनष्ट जाय अहमेव नानक प्रभ शरणागति कर प्रसाद गुरुदेव। कर प्रसाद गुरुदेव, यदि गुरु की कृपा हो जाए, गुरु की नदर हो जाए, मेहर हो जाए, तो काम क्रोध लोह मोह अहंकार आपके जीवन से समाप्त हो जाता है। लेकिन गुरु की कृपा, गुरु का मेहर उसी के ऊपर होता है, नानक प्रभु शरणागति। जो व्यक्ति प्रभु के शरणागत हो जाता है, अपने को प्रभु के चरणों में छोड़ देता है, जो ये कहता है हे नाथ, हे प्रभु, हे सच्चे पातशाह, तुम्हारे प्रति मेरा कोई शिकायत नहीं है, तू जैसा रखे हमें मंजूर है, हर एक परिस्थिति में प्रभु के प्रति धन्यवाद, वाहिगुरु के आगे शुक्र मनाना, यही शरणागति है, और कोई शरणागति नहीं है। 24 घंटा प्रभु को धन्यवाद, धन्यवाद, हे प्रभु, जितना मुझे चाहिए था उससे तूने ज्यादा दिया है। जब तुम्हारे मन में धन्यवाद का भाव होगा, शरण में चले जाओगे प्रभु के, तो गुरु की कृपा होगी, और गुरु की कृपा से काम क्रोध लोह मोह अहंकार ये तुम्हारे समाप्त हो जाएंगे। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, त्रिविधम नरकस एदम द्वारम नाशनम आत्मना, कामः क्रोधः तथा लोभः तस्मात् एतत् त्रयम् त्यजेत्। काम क्रोध तथा लोभ, ये तीन जो है नरक के द्वार हैं। जिसको नरक जाने का हॉबी है, शौक है, वो काम के वशीभूत हो जाए, क्रोध के वशीभूत हो जाए, लोभ के वशीभूत हो जाए, काम क्रोध लोह मोह अहंकार। काम है कि जितना प्रभु ने दिया है उतना काफी नहीं है। क्रोध, जो तुम्हारी वासना, जो तुम्हारी वासना की पूर्ति में जो विघ्न पाता है उसके प्रति क्रोध होता है। लोभ, जितना है उतना काफी नहीं है, जो दूसरे के पास है वो भी मेरा हो जाए, उसके लिए कुछ भी करना पड़े, ये लोभ है। काम क्रोध लोभ, और मोह है अपने को आत्मा ना जानना, और जो आत्मा से भिन्न है, देह इंद्रियां मन बुद्धि और इससे जुड़ा हुआ परिवार संबंधी, इसको अपना मानना। वस्तुतः हमने ध्यान में ये बता रहे हैं कि वस्तुतः तुम सत चित आनंद और व्यापक हो। शरीर इंद्रियां मन बुद्धि, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, ये तीन कपड़े हैं। पांच कोश, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, ये पांच कोश हैं। इन पांच कोशों में आत्मा का वास होता है। पांच कोश तुम नहीं हो, तुम तो परमात्मा के स्वरूप सतचित आनंद व्यापक। अपने स्वरूप को ना जानना और जो तुम नहीं हो उसके साथ मोह करना, आसक्त होना, अपना कहना, ये मोह है। यह सारा प्रकृति ईश्वर का है, लेकिन अपना कहना, मेरा कहना, ये मोह है। मोह के वशीभूत होकर के व्यक्ति सब पाप कर लेता है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, और अहंकार हमारे और परमात्मा के बीच यदि कोई पर्दा है तो वो है अहंकार। हाँ, मैं आज शायद आए हैं या नहीं मुझे पता नहीं, आज पूछ रहे थे कि स्वामी जी हमें दीर्घ रोग है, दारू भी इसमें है, इसका अर्थ बताएं। आए आप लोग जिन्होंने ये प्रश्न पूछे हैं हाथ उठा दो, मैं पता चल जाए। नहीं आए? आए। मैं कहा था कि चलो कथा में ही बता देंगे ताकि सारे को लाभ हो जाए। हमें दीर्घ रोग है, दारू भी इसमें है। दो प्रकार का हमें है। जो व्यक्ति आत्मा को मैं कहता है वो शुद्ध अहंकार है। जो तुम्हारी संपत्ति है उसको मैं कहना ये बुरा नहीं है, लेकिन किसी के चीज को तुम अपना कहो ये जहर है, ये चोरी है। हमें दीर्घ रोग है, हमें जो है एक क्रोनिक डिजीज है अहंकार। लेकिन गुरु महाराज एक यहां पर और रहस्य की बात कह रहे हैं कि दारू भी इसमें है, दवा भी इसके अंदर ही है, हमें के अंदर ही। उस दवा को ढूंढना है। वैद्य लोग हकीम लोग संख्या जहर होता है, आप जीभ से चाटो और 5 मिनट में आदमी मर जाता है। लेकिन उस जहर से ऐसी दवाई बना लेते हैं कि मरते हुए लोग भी बच जाते हैं उसको खाने से। अब यहां हमें जो है दीर्घ रोग है, जहर है, अब यहां पर दवाई बनाना है इसको, और दवाई बनाने के लिए तो कुछ करना ही पड़ेगा ना। दवाई कैसे बनता उसको देखो। हमें दीर्घ रोग है, दारू भी इसमें है। जो व्यक्ति गुरु की कृपा से, संत की कृपा से, ईश्वर की कृपा से, शास्त्र की कृपा से, स्वयं की कृपा से, जिसने ये जाना है कि शरीर इंद्रियां मन बुद्धि से रहित मैं सत चित आनंद व्यापक परमात्मा का अंश हूं, जो इस रूप से मैं जानता है, ये तो दवा है, ये अमृत है। लेकिन शरीर इंद्रियां मन बुद्धि और सारा संसार ये प्रकृति का है, क्योंकि 5 तत्व को तन रचियो, जानहु चतुर सुजान, और जते उपजियो नानका लीन ताहि महिमा। ये 5 तत्वों से ये शरीर बना है। जो शरीर इंद्रियां मन बुद्धि और संबंधियों को मैं कहता है ये मैं हूं, ये चोर है। हाँ, ये प्रकृति का, और कहता है मेरा ये अहंकार है। जो तुम्हारी नहीं है उसको मेरा कहना अहंकार है, जो तुम्हारा चीज है उसको कहना ये सत्य है। तो यदि किसी व्यक्ति को ये ज्ञान हो गया है कि सभना जिया का एक दाता, जो सारे जीवों को रिजक पहुंचाने वाला जो अकाल पुरुष है, सभना जिया का एक दाता, सो आत्मा करके मैं विसर ना जाई, सब कुछ भूल जाओ, लेकिन सिर्फ एक बात याद रखो कि परमात्मा ही आत्मा है, आत्मा करके सबके अंदर है, और आत्मा ही परमात्मा है। यदि तुमको गुरु के द्वारा, संत के द्वारा ऐसा ज्ञान हो गया है तो ये परम दवाई है, परम दवाई। और इस दवाई को खाने से जो भाव रोग है, जन्म जन्मांतरों का अज्ञान है, अंधकार है, वो नष्ट हो जाता है और अंदर ही प्रकाश होता है। इसलिए होमय दीर्घ रोग है, दारू भी इसमें है। दारू ये है कि आत्म चीनस परमात्म सोई, जिसने आत्मा को जान लिया वही परमात्मा है। गुरबानी में और आया है, आत्मा परात्मा एको करे, अंतर की दुविधा अंतर मरे। जिसने आत्मा को परमात्मा रूप से जाना है और परमात्मा को आत्मा रूप से जाना है, इसको अद्वैत कहते हैं। इसमें इसको जीव ब्रह्म की एकता कहते हैं, इसको ब्रह्म ज्ञान कहते हैं। और यही सारा कुछ शिविर में बताया जा रहा है। ये जो 7 दिन का जो ध्यान क्लास है, सिर्फ गुरबानी का एक पंक्ति कि जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो खोजे सारे नहीं, जो खोजे सो पावे। जब गुरु महाराज का हुक्म हो गया है कि जो सारा कुछ ब्रह्मांड में वो इस पिंड में है, और जो खोजे सो पावे, जो खोजेगा वो पावेगा। पीपा प्रणवय, पीपा जी कह रहे हैं, मैं निश्चय पूर्वक कह रहा हूं, अनुभव से कह रहा हूं, पढ़ के या सुन के नहीं कह रहा हूं। पीपा जी कह रहे हैं पीपा प्रणवय, निश्चय पूर्वक ऑथेंटिक रूप से कह रहा हूं कि परम तत्व है, सबके अंदर परम तत्व है, सुप्रीम बीइंग है, लेकिन सतगुरु होए लखावे। कोई ऐसा संत, कोई ऐसा महापुरुष जिसने किसी महापुरुष से जाना हो, अनुभव किया हो, ऐसा कोई मिल जाए और जना दे, तो जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो खोजे सो पावे, पीपा प्रणवय परम तत्व है, सतगुरु होए लखावे। और काहे रे मन खोजन जाई, सर्व निवासी सदा अलेपा तोहे संग समाय। सिर्फ यही दो पंक्ति के ऊपर 7 दिन आत्म अनुभव के, हम आत्मा को कैसे अनुभव करें। बाहर ढूंढने जाएंगे तो कहाँ कहाँ ढूंढेंगे, इतना बड़ा ब्रह्मांड कहाँ कहाँ परमात्मा को ढूंढेंगे। पीपा जी ने इतना सौखा कर दिया है कि काहे को जाना है जंगल और काबा और काशी और हरिद्वार, और कहाँ जाओगे तुम जहाँ हो अंदर ही ढूंढ लो। ये 7 दिन के अंदर मैं कौन हूँ, संसार क्या है, परमात्मा हमारा क्या संबंध है, मौत किसकी होती है, शरीर मरता है, आत्मा मरती है या सूक्ष्म शरीर मरता है, जीवन का जो मिस्ट्री है, रहस्य है, उसको बताया जा रहा है। और जो उस रहस्य को जान लेता है, वह बचा हुआ जिंदगी ऐसे जीता है जैसे एक कमल पानी में रहता तो है, खिलकर सुगंधी देता है, रहता है पानी में लेकिन भींगता नहीं है, जल उसके साथ स्पर्श नहीं करता। हमने रहना है इस संसार में सबके बीच में, पति के साथ, पत्नी के साथ, बच्चों के साथ, दोस्तों के साथ, लेकिन अंदर एक टोटल अनुभव ये करना है कि ये जब शरीर मैं नहीं हूँ, इंद्रियां मैं नहीं हूँ, मन बुद्धि नहीं हूँ, तो इसके साथ जो भी संबंध है वो मैं कैसे हो सकता हूँ। जो तन उपजिया संग ही, सो भी साथ ना होया। और जितने संबंध वो शरीर करके हैं, पहले चित्त में वैराग्य, क्योंकि बिन वैराग्ना छोटा समाया। जब आपके हृदय में वैराग्य होगा तो माया से आपका छुटकारा होगा, और ज्यों ही माया से छुटकारा होगा और कोई संत महापुरुष ज्ञान देंगे, आपको ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा। ब्रह्म ज्ञान कठिन तो जरूर है लेकिन असंभव नहीं है। और जो व्यक्ति प्रण कर ले, संकल्प कर ले कि इसके लिए हमें मौत ही क्यों ना हो जाए, उसके लिए असंभव नाम की कोई चीज़ नहीं है। और इस ज्ञान की महिमा आगे आ रही है, ब्रह्म ज्ञान की कितनी है। साध संगत जी गुरु महाराज तो यहाँ तक कहते हैं, तन मन धन शीश भेंट देऊं, जो हर की बात सुनावे, जो निरोल एक ओंकार वाहेगुरु की चर्चा जो सुनावे, उसके लिए सब कुछ दे दें। सब कुछ देने का भाव ये है कि अपने को तन मन बुद्धि से अलग आत्मा जानना है। इसलिए होमय दीर्घ रोग है, दारो भी इसमा है। जो व्यक्ति अपने को आत्मा जानता है, पढ़ा नहीं हो, जिसको अनुभव हो कि मैं आत्मा हूँ और आत्मा परमात्मा का स्वरूप है, तो ये शुद्ध अहम है और ये दवा है। और जो शरीर इंद्रियां मन बुद्धि को जो तुम्हारा नहीं है, ये प्रकृति का है, इसको मैं मेरा कहना ये अहंकार है और ये बहुत बड़ा रोग है। ये ऐसा रोग है कि कैंसर से भी बड़ा रोग है। कैंसर तो एक शरीर को मारता है, लेकिन जो अशुद्ध अहंकार है ये अनंत जन्मों में भटका देता है। इसीलिए काम क्रोध और लोह मोह विनश जाए अहमेव, नानक प्रभु शरणागति कर प्रसाद गुरुदेव। साहेब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज आज उपदेश कर रहे हैं कि जिस प्रभु की कृपा से ये शरीर स्वस्थ रहता है, जेह प्रसाद आरोग कंचन देही लिव लावो तिस राम स्नेही। हम उस राम के साथ जो रमंती इति राम, जो घट घट में हरजू बस है, सभी घट राम बोले, ऐसा जो राम है जो प्रेम करता है तुमको, स्नेह करता है, उसके साथ तुम अपनी वृत्ति को जोड़ो, लिव लावो। दो प्रकार की वृत्ति है, एक विषयाकार वृत्ति, एक ब्रह्माकार वृत्ति। जब तुम विषयों का चिंतन करते हो तो तुम्हारी वृत्ति विषयाकार हो जाती है, और जब तुम वाहेगुरु का चिंतन करते हो परमात्मा का चिंतन करते हो तो तुम्हारा मन जो है ब्रह्माकार वृत्ति हो जाती है। विषयाकार वृत्ति से व्यक्ति नीचे गिर जाता है और ब्रह्माकार वृत्ति से धीरे धीरे परम आनंद सुखमणि को प्राप्त होता है। इसलिए यदि तुम्हें सुखमणि चाहिए तो तुमने लिव लावो तिस राम स्नेही, जो राम तुमको अपने हृदय से तुम्हें लगाया हुआ है उसके साथ लिव लावो, अपनी वृत्ति को जोड़ो, तो क्या होगा, उसकी कृपा से ये शरीर तुम्हारा रोग रहित होगा। जेह प्रसाद तेरा ओला रहत, मन सुख पावह हर हर जस कहत। जेह प्रसाद तेरा ओला रहत, जिसकी कृपा से तुम्हारे अवगुण ढके रहते हैं। यदि मन जो है ना, मन एक ऐसा कैमरा हो जो मन की सारी बात को जानता हो, तो जो बड़े बड़े अपने को महापुरुष कहलाते हैं ना, उसके भी मन के कैमरे को देखो तो वो बहुत ऐसी चीज़ें भी सोचते रहते हैं कभी कभी, जो कि बहुत ही उचित नहीं है। मनुष्य पता नहीं मन से क्या क्या जो है सोच बैठता है, लेकिन परमात्मा पर्दा रखा हुआ है। जेह प्रसाद तेरा ओला रहत, मन सुख पावह हर हर जस कहत। जो परमात्मा तुम्हारे अवगुणों पर पर्दा रखता है, उसको जो है अपने मन सुख पावह हर हर जस कहत। हे मन, उसके सुख को पाकर हमेशा जो है सो जस गाओ, हरी 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 हरी, नारायण नारायण, सतनाम वाहेगुरु सतनाम वाहेगुरु, हमेशा उसके जस को कहो। एक समय की बात है, एक व्यक्ति जो बहुत सत्संगी था, बहुत ही अच्छा था, सूझवान था, सत्संग के द्वारा उसको विवेक हो चुका था, उसकी पत्नी सत्संग में नहीं आती थी। देखो, सत्संग में आने का और सत्संग में ना आने का क्या फायदा नुकसान है। वो आदमी सत्संग में जाता था और ये उसको पता हो गया था कि जो व्यक्ति दूसरे के अवगुणों पर पर्दा रखता है वो महान है, जो दूसरे के अवगुणों को उछालता है वो नीच आदमी होता है। बहुत से लोगों का एक ही उद्देश्य है जीवन में कि कहाँ से छोटा सा किसी के अवगुण को देखें और जा करके रेडियो में और लोगों को चलते चलते पुकार पुकार करके उसको बड़ा करके खींच के और लोगों को बताए, ऐसा व्यक्ति नीच होता है। समझ, वो आदमी सत्संगी था, उसकी पत्नी कभी सत्संग नहीं जाती थी। सारी पत्नियां ऐसी नहीं होती, प्रायः सत्संग में हमारी माताएं बहनें ही ज़्यादा आती, लेकिन कोई एकाक की बात कर रहा हूँ। और इन्हीं के कृपा से आश्रम और जितने भी धर्म स्थान है ना, इनकी ही दया से चलती है, क्योंकि परमात्मा ने इनको भक्ति ज़्यादा दिया है। ये कुदरत की देन है, वाहेगुरु की बख्श है इनके ऊपर। लेकिन कोई ऐसा होते हैं तो सत्संग में जाने के ना जाने के कारण उसका मन चंचल रहता था। उस स्त्री का न किसी पुरुष के साथ संबंध हो गया, क्योंकि मन ही है ना, मन किसके साथ जुड़ जाए पता नहीं चलता। वो आदमी, उसका पति सत्संग में गया हुआ था, वो किसी आदमी के साथ घर में बिस्तरे पर दोनों लोग सोए थे। आदमी जब सत्संग से घर गया तो देखता क्या है, अपनी पत्नी को किसी पुरुष के साथ सोया हुआ है और पर्दा नहीं। उसने अपना चादर लेकर के उसके ऊपर ढांक दिया और जाके दूसरे कमरे में सो गया। सुबह हुआ जब, उस पत्नी को तो पता चल गया कि मुझे बहुत सजा मिलेगा, ये होगा, बहुत वो कलप रही है, और आदमी तो चला गया। उसकी पत्नी पति के आके चरणों में माफ़ी मांगती है, विनती करती है, मुझे माफ़ कर दो। ये कर, उसका पति कहता है, मैंने तुमको कुछ कहा तो नहीं, गलतियां बड़े बड़े से हो जाते हैं, गिर जाना, चलते चलते गिर जाना, एक कोई भी व्यक्ति गिर सकता है, लेकिन गिर के ना उठना एक गलत है। उस और देखो, वो शिक्षा दे रहा है पत्नी को, यदि तुमको अपने गलती का ये एहसास है तो तुम आगे से ये गलती ना करो, बाकी तेरी मर्जी है। वह हाथ जोड़ती है, पांव पड़ती है कि मैं जिंदगी में ऐसी गलती नहीं करूँ। साथ संग जी, शरीर का कोई पता नहीं होता, वो आदमी का अंतिम समय हो गया, लेटा हुआ है मृत्यु सैया पर, मौत का इंतजार कर रहा है आदमी। उसकी पत्नी बहुत रोती है, पांव पकड़ के बहुत रोती है, आप मुझको छोड़ के ना जाओ। वो आदमी कहता है कि तुम्हारे पास सब कुछ है, मकान तेरे नाम कर दिया है, सब कुछ कर दिया है तेरे नाम, तुम्हारा लड़का है, सब कुछ है। वो कलप के एक बात कहती है, सब कुछ है और ये भी मुझे ज्ञान हो गया है आपके द्वारा कि मनुष्य को इस संसार से जाना ही है, कोई रोक नहीं सकता। रोना मुझे सिर्फ एक बात का है, उसकी पत्नी कहती है कि मेरे पर्दे को कौन ढकेगा। आप इतने महान हैं, आपकी महानता का वर्णन नहीं कर सकती, आपने हमारे पर्दे को ढके हैं, आपके न रहने पर मेरा पर्दा कौन ढकेगा, हमारे अवगुणों को कौन छिपाएगा। वहां पर उसका पति कहता है कि तुम प्रभु के चरणों में लग जाओ। वही वाहेगुरु ही सबका पर्दा ढकता है और कोई किसी का पर्दा नहीं ढकता। इसी चीज को साहेब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज यहां पर उपदेश कर रहे हैं। जह प्रसाद तेरा ओला रहत, जिसकी कृपा से परमात्मा जो है सो तुम्हारे पर्दे ढकता है। मन सुख पावे हर हर जस कहत, कहते हैं उस प्रभु को अपनी रसना से जिह्वा से जस गाओ। जह प्रसाद तेरे सगल छिद्र ढाके, मन सरनी पर ठाकुर प्रभु ताके। जह प्रसाद तेरे सगल छिद्र ढाके, जिसकी कृपा से तुम्हारे सारे छिद्र अवगुण ढकिया जाता है, मन सरनी पर ठाकुर प्रभु ताके। उस ठाकुर उस कृपा उस प्रभु के आगे जो है सो तुम उसके शरण में चले जाओ। जह प्रसाद तुझको न पहुँचे, मन सास सास सिमरह प्रभु ऊँचे। जो परमात्मा ऊँचे से भी ऊँचा है, जहां कोई पहुंच नहीं सकता। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, जहां मन बुद्धि इंद्रियां कोई नहीं जा सकता, लेकिन प्रभु की कृपा से यदि तुम सांस सांस सुमरण करोगे तो तुम वहां पहुंच सकते हो, अनुभव कर सकते हो। जह प्रसाद तुझको न पहुंचे, मन सांस सांस सिमरह प्रभु ताके। उस प्रभु का तुम श्वास श्वास सिमरण करो। श्वास श्वास सुमरण करने का एक ही तरीका है कि जब श्वास गहरी लो तो वाहे सतनाम, और श्वास बाहर छोड़ो तो गुरु। सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु। एकांत में बैठकर कोई आसन बिछा लो और शरीर को पूरा स्थिर करके प्रभु के आगे हाथ जोड़कर नमन करके अरदास करके और ये सिमरन शुरू करो। गहरी सांस लो सतनाम, गहरी सांस छोड़ो वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु। ये तुम्हारी संपत्ति है। जो व्यक्ति बाहर के जो है ना ठीकरे को इकट्ठा करके जो धनवान समझता है वो मूर्ख है। असल जो संपत्ति है ये नाम धन है, और जो नाम की कमाई है, नाम की संपत्ति है, वो जो व्यक्ति सांस सांस अंदर सांस आया तो सतनाम, श्वास बाहर गई तो वाहेगुरु। जो श्वास श्वास प्रभु को सुमरण करता है तो इस संपत्ति से धीरे धीरे वो अमीर बन जाता है। जो नाम की संपत्ति से अहंकार समाप्त होता है और संसार की संपत्ति से अहंकार पैदा होता है, दोनों में ये अंतर है। जो प्रभु के नाम रूपी संपत्ति है उससे मन में दया संतोष क्षमा सत्य आनंद परोपकार और किसी को भला करने का भाव पैदा होता है, नम्रता, ये सारे सद्गुण उसके अंदर आते हैं। लेकिन संसार की संपत्ति से अहंकार, लोभ, मोह, क्रोध, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, ये सारे अवगुण जो हैं उसके पीछे पीछे आ जाता है। धन हो अहंकार ना हो ये हो नहीं सकता।
और यदि धन हो के अहंकार नहीं है तो वो महान है। जवानी हो और अहंकार ना हो, खूबसूरती हो अहंकार ना हो, ये हो नहीं सकता। और यदि जवानी होकर खूबसूरती होकर अहंकार नहीं है तो समझो ये प्रभु की कृपा है, ये प्रभु का प्रसाद है तुम्हारे ऊपर। जेह प्रसाद पाई दुर्लभ देह, नानक ताकी भगत करे। जिसकी कृपा से तुम यह दुर्लभ देह, लख 84 जून विच मानुख जन्म दुर्लभ हो पाया। जिस दुर्लभ शरीर को तुमने जिसकी कृपा से पाया है, नानक ताकी भगत करे, उस प्रभु का तुम भक्ति करो। ईश्वर अनुग्रहात पुंसाम अद्वैत वासना, ईश्वर की कृपा से मन में भक्ति पैदा होता है। तीन चीजें दुर्लभ है, दुर्लभम त्रयमेव तद देवानुग्रह हेतुकम, मनुष्यत्व मुमुक्षुत्व महापुरुष संश्रय। इस संसार में तीन चीजें दुर्लभ है, एक मनुष्य शरीर को पाना, और मनुष्य शरीर को पा करके किसी संत महापुरुष का शरण मिल जाए, ये भी दुर्लभ है, आसानी से नहीं मिलता, पूर्व जन्म के पुण्य से मिलता है। और तीसरा दुर्लभ क्या है, दुर्लभ का मतलब बहुत मुश्किल से मिलना। तीसरा जो दुर्लभ वस्तु है कि मोक्ष की इच्छा पैदा हो जाना, अंदर उस प्रभु परमात्मा को जानने का एक जिज्ञासा प्यास अंदर पैदा हो जाए। मनुष्य शरीर मिलना, किसी संत महापुरुष का शरण और मोक्ष की इच्छा, ये तीन चीजें दुर्लभ है। और यदि जिसके अंदर है उसके लिए मोक्ष जो है कोई दुर्लभ नहीं रह जाता, उसको आसानी से मिल जाता। जेह प्रसाद पाई दुर्लभ देह, नानक ताकी भगत करे। दुर्लभ देह पाई वडभागी, नाम न जपहते आत्म घाती। जो आत्मा को जाने बगैर शरीर छोड़ देता है वो आत्महत्यारा है, ऐसा वेद का मंत्र है, वेद में भी ऐसा लिखा है। वो व्यक्ति आत्महत्यारा है जो आत्मा को जाने बगैर मर जाता है। और उसी चीज को गुरु महाराज कहते हैं, नाम न जपह ते आत्म घाती, रैन गवाई सोए कै, दिवस गवाया खाए, हीरे जैसा जन्म है कौड़ी बदले जाए। हीरा देख करके कौड़ी लेना ये कोई सियानप तो नहीं है। जेह प्रसाद आभूखन पहरी जाए, मन तिस सिमरत को क्यों आलस कीजे। जेह प्रसाद आभूखन पहरी जाए, जिसकी कृपा से ये तरह तरह के आभूषण, कड़ा और बाली और चैनी और पता नहीं, आप लोगों को हम बहनों को थोड़ा ज़्यादा ही पता होता है, आदमी तो सिर्फ बहुत पहन लेगा तो एक कड़ा पहन लेगा और क्या पहन लेगा। जेह प्रसाद, जिसकी कृपा से तुम्हें यह सब कुछ मिला है, जेह प्रसाद आभूखन पहरी जय, हे मन जिसने तुम्हें इतना सुंदर सुंदर जेवर दिए हैं, सजावट दिया है प्रभु परमात्मा ने, उसके सुमरण करने में तो आलस क्यों करता है। जिसने तुम्हें इतना अच्छा श्रृंगार दिया है, आभूखन कहते हैं जेवर को, जेह प्रसाद आभूखन पहरी जय, मन तिस सिमरत क्यों आलस कीजे। जिस परमात्मा ने तुम्हें सजावट करने के लिए तरह तरह के जेवर दिए हैं और श्रृंगार के सामान दिए हैं, उस परमात्मा को सुमरण करने में तुम क्यों आलस करता है। अर्थात जब प्रभु का सुमरण का समा हो उस वेले थोड़ी जो है सो चुस्ती रखनी है, आलस नहीं रखना है। जेह प्रसाद अश्वहस्त अश्वारी, मन तिस प्रभु को कबहू न बिसारी। जिसकी कृपा से हाथी घोड़ा और तरह तरह के ये BMW और मर्सिडीज और क्या क्या कार आपको मिला है चढ़ने के लिए, जिसकी कृपा से। जेह प्रसाद अश्व हस्त असवारी, जो तरह तरह के आपको मोटरसाइकिल और तरह तरह के साइकिल भी मिला है। मन तिस प्रभु को कबहू ना विसारी, जिस परमात्मा ने ये सब कुछ दिया है तुमको उसको कभी ना भुलाओ। यह प्रसाद बाग मिलख धना, राख परोए प्रभु अपने मना। हे मन, जिसकी कृपा से ये सारा जायदाद मिला है तुमको, बाग मिला है तरह तरह के, जिसमें फूल लगाए हो आप लोग घरों में, नहीं इधर सैर करने जाता हूँ ना, कितने सुंदर सुंदर फूल होते हैं घरों में, ये प्रभु की कृपा से तुम्हें मिला है। यह प्रसाद बाग मिलख धना, मिलख कहते हैं जागीर जायदाद को, जिसकी कृपा से मिला है। राख परोए अपने प्रभु अपने मना। हे मन, उस परमात्मा को अपने मन में रख। जिन तेरी मन बनत बनाई, उठत बैठत सद तिसह ध्याई। जिन तेरी मन बनत बनाई, जिसकी कृपा से तुमको इस संसार में जो है सो तरह तरह के मान, तरह तरह के तुम्हें जस मिल रहा है और तुम्हें संवार के रखा हुआ है। जिन तेरी मन बनत बनाई, उठत बैठत सद तिसह ध्याई, उस परमात्मा को तुम सदा उठते बैठते चलते फिरते सोते जागते उसका ध्यान करो। यहाँ ध्याई शब्द कहें, ध्यान क्या है? अपने अंदर झांकना कि मैं कौन हूं। ध्यान का भाव यह है कि अपने इंद्रियों को बाहर से रोक करके अंदर ले जाना और यह जानने का प्रयत्न करना कि इस शरीर के अंदर जो हरि परमात्मा राम बसा हुआ है वो कहाँ है, किस रूप में है, उसका अनुभव करने का प्रयास करना गुरु की कृपा से, महापुरुषों की कृपा, ये ध्यान है। तिसह ध्याय जो एक अलख है, तिसह ध्याय जो एक अलख है, यहाँ वहा नानक तेरी रख है। जो व्यक्ति उस परमात्मा का एक वाहिगुरु का अलख अलख है, जो अलख है, जो जाना नहीं जाता, जो मन से बुद्धि से इंद्रियों से जाना नहीं जाता, गुरु उसको भी लखा देते हैं, संत महापुरुष उसको भी जना देते हैं। जो इन आँखों से नहीं दिखता, संत महापुरुष तुम्हें दिव्य दृष्टि देते हैं। दिव्य दृष्टि क्या है, दिव्य आंख क्या है, तीसरा आंख क्या है, ज्ञान ही तीसरा आंख है, विवेक ही तीसरा आंख है। जब गुरु तुमको ज्ञान विवेक सूझ जब तुमको देंगे तो उस दिव्य चक्षु से, दिव्य आंख से, थर्ड आई से तुम वाहेगुरु का अंदर ही दर्शन करोगे। तीसह ध्याय जो एक अलख है, यहा वह नानक तेरी रख है। साहेब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज उपदेश कर रहे हैं कि उसको जो है वो यहाँ वहाँ यानी लोक परलोक दोनों ही जो है सो समर जाता है। जह प्रसाद करह पुण्य बहुदान, मन आठ पहर कर तिसका ध्यान। जिसकी कृपा से तुम पुण्य करते हो, पुण्य करवा लेना ये भी प्रभु की कृपा से होता है, नहीं तो हाथ से दान थोड़े निकलता है, ये बड़ी मुश्किल से निकल, सेवा भी थोड़े हो पाती है, सेवा भी भागों वाले को मिलते हैं। हमारे इस गुरुद्वारे के जो प्रधान जी है ना, मैं इनको देखता हूँ कि 24 घंटा लगे रहते हैं, ये प्रभु की बड़ी कृपा है इनके ऊपर, ना कोई प्रधानगी का अहंकार और 24 घंटा देखते रहना क्या कमी है, कुछ ना कुछ सेवा कर हाथ पास, ये प्रभु की इनके ऊपर बड़ी कृपा है जो इनसे सेवा करवा लेते हैं। जह प्रसाद करह पुण्य बहुदान, जो पुण्य दान का और सेवा का तुमको मिला है ये प्रभु की कृपा से मिला है। मन आठ पहर कर तिसका ध्यान। हे मन, जिसकी कृपा से तुम्हें ये शुभ गुण मिला है तो उसका ध्यान कर। लोग कहते हैं ना ध्यान का खंडन है गुरु महाराज में, कदम कदम पर पंक्ति पंक्ति में ध्यान की चर्चा है। मन आठ पहर कर तिसका ध्यान, आठ पहर बोला, हमने तो एक घंटा करवाता हूं ना ध्यान, यहां तो गुरु महाराज आठ पहर की बात कर रहे हैं। साहेब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज हम लोगों को उपदेश कर रहे हैं, जेह प्रसाद तू आचार व्यवहारी, तिस प्रभु को सास सास चितारी। जिसकी कृपा से तुम्हारा व्यवहार बहुत अच्छा व्यवहार होता है, हर एक के साथ अच्छा बर्ताव करते हो, तुम्हारा आचरण अच्छा होता है, जो शुभ गुण है तुम्हारे अंदर, ये प्रभु की कृपा से है। नहीं तो उसकी कृपा ना हो ना तो ये व्यक्ति तो एक मिनट में गिर जाए। जो तुम्हारे अंदर प्रभु ने शुभ गुण दिया है ये उसकी दात है। जेह प्रसाद तू आचार व्यवहारी, तिस प्रभु को सास सास चितारे। उस प्रभु को बार बार चितारो, चिंतन करो। जेह प्रसाद तेरा सुंदर रूप, जिसकी कृपा से तुम सुंदर लगते हो, चार आदमी तुमको देखने के लिए लालायित होता है, ये भी प्रभु की कृपा है। जेह प्रसाद तेरा सुंदर रूप, सुंदर रूप यदि मिलता है ना तो अहंकार ना करो, प्रभु को धन्यवाद दो, हे प्रभु मुझे बहुत सुंदर रूप दिया है, ये आपकी कृपा है। सो प्रभु सिमरह सदा अनूप, वो परमात्मा भी सुंदरम सत्यम शिवम सुंदरम, उस परमात्मा को सुंदरम कहा गया है, उससे ज्यादा सुंदर इस संसार में कोई नहीं है। सत्यम वो सत्य है, शिवम अर्थात सबका कल्याण करता है, और सुंदरम वो अति सुंदर है, इतना सुंदर है कि यह सारा संसार से भी ज्यादा सुंदर है, उसकी सुंदरता का मन वाणी बखान नहीं कर सकता। और एक दूसरा अर्थ क्या है, हे प्रभु इस सारे जीवों के अंदर जो सुंदरता है ये तेरी ही तो सुंदरता है, और किसकी सुंदरता है, इस आंखों से कौन देखता है, प्रभु ही तो झांक रहा है, इस कानों से कौन सुनता है, इसके अंदर जो सांस आ जा रहा है वो कौन लेता है, और जो ये सुंदरता तुम्हारे अंदर प्रभु ने दिया है ये प्रभु की ही सुंदरता है। इसीलिए गुरु महाराज कह रहे हैं, जेह प्रसाद तेरा सुंदर रूप, सो प्रभु सिमरह सदा अनूप, सदा उसका सिमरन करो। जेह प्रसाद तेरी नीकी जात, सो प्रभु सिमर सदा दिन रात। जिसकी कृपा से जो है, जेह प्रसाद तेरी नीकी जात, जिसकी कृपा से तुम्हारा कुल परिवार वंश उत्तम है, सत्संगी है, सेवा वाला है, जिसकी कृपा से। जेह प्रसाद तेरी नीकी जात, सो प्रभु सिमर सदा दिन रात, उस प्रभु को तुम रात दिन सिमरन करो। जेह प्रसाद तेरी पत्र है, गुरु प्रसाद नानक जस का है। जिसकी कृपा से इस संसार में तुम्हारा इज्जत रहता है, वह उस गुरु की कृपा को तुम हमेशा जस गायन करो। जेह प्रसाद तेरी पत्र है, जिसकी कृपा से इस संसार में तुम्हारा इज्जत रहता है, गुरु प्रसाद नानक जस कहत। गुरु की कृपा से साहेब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते हैं, उस प्रभु का जस गायन करो। इस संसार में जो कुछ मिला है ये तुम्हारा ही आज ने कर्म जो शुभ कर्म किए हो उसके अनुसार परमात्मा ने तुम्हारे ऊपर कृपा किया है। एक समय की बात है, एक राजा हुआ है बहुत धर्मात्मा, विक्रमादित्य, उज्जैन में, उज्जैन का एक राजा हुआ है विक्रमादित्य, उसके नाम से संबत भी चलता है। विक्रमादित्य राजा होने के बावजूद भी प्रजा का इतना पालक था, प्रजा के दुख सुख को एक कर जानता था, सारी रात वो जागता था, सारी रात जाग करके गलियों में घूमता था भेष बदल करके, और ये देखता था कि किसी के घर से रोने की आवाज तो नहीं आ रही है, और दीवार के साथ कान लगा के सुनता था, किसी के घर में कोई रो तो नहीं रहा है, कोई दुखी तो नहीं है, और तरह तरह के लोगों को भेजता था कि हमारे राज्य में कोई व्यक्ति धन के कारण, रोटी के कारण, कपड़ा के कारण, एजुकेशन के कारण और किसी कारण से दुखी तो नहीं है। वो पता लगाता था और उसको दिन के समय में बुला करके उसको मदद देता था। अर्थात पूरे राज्य के लोगों को अपना परिवार समझता था। एक दिन विक्रमादित्य के चित्त में आया कि जो इतना बड़ा राजपाट मिला है, ये कैसे मिला है, इसको जानना चाहिए। उसने पुरोहित को बुलाया कि तुम अपना ज्योतिष लगा करके देखो कि क्या हमने पूर्व जन्म में कौन सा कर्म किया है जिसके कारण इस जन्म में हमको इतना बड़ा राज्य मिला है। ज्योतिषी ने प्रयत्न किया लेकिन उससे ये बात बनी नहीं, और साथ में ये भी अनाउंस किया था कि यदि नहीं बताओगे तो जेल में डाल देंगे, और जो बताएगा वो जो मांगेगा उसको दे देंगे पुरस्कार के रूप में। साथ संगत जी, वो जो ब्राह्मण था पुरोहित, वो घर आया, दुखी था। उसकी लड़की कहती है, पिताजी आप दुखी क्यों हैं? कहते हैं, बेटी ऐसी ऐसी बात है, चिंता ना करो, इसका उत्तर मैं दूंगी। कहते हैं, राजा को आप इतना कह दो कि उसको ये जवाब जानना चाहते हैं तो मेरे पास उसको आना पड़ेगा, क्योंकि शिष्य बन के ज्ञान लिया जाता है, गुरु बन के ज्ञान नहीं लिया जाता। बहुत से लोग आते हैं अपने पास, कहते स्वामी जी जल्दी बता दो ब्रह्म ज्ञान, क्योंकि हमको जल्दी सर्विस पर जाना है। या रास्ते में चलते चलते आप जो हमको जो है और भी अपॉइंटमेंट वगैरह जल्दी आप बता दो। मैं तरस करता हूँ उसके ऊपर, तुम क्या समझ रखा है, कोई पत्थर है जो तुमको पकड़ा दूँ जो है सो त्रिलोचन जैसा? यदि त्रिलोचन जैसा तेरी अंदर भक्ति भी हो तो कोई बात नहीं, धन्ना जैसी भक्ति हो तो फिर तो कोई बात नहीं है। यहाँ पर विक्रमादित्य धर्मात्मा राजा था, उस लड़की के पास नम्रता धारण करके गया और नमस्कार करता है। ये राजा जो है उस कन्या को, स्त्री को नमस्कार करता है, आप कृपा, और नीचे बैठा हो, नीचे बैठ के कहता है, मुझे बताओ कि हमने पूर्व जन्म में क्या पुण्य किया था। कहते हैं, देखना चाहते कि सिर्फ जानना ही चाहते? कहते हैं, हम देखना चाहते हैं। ऐसा करो, मैं भी बता सकती हूँ, मुझको सब कुछ पता है, लेकिन यहाँ से 10 कोस पर एक महात्मा तपस्या कर रहा है, उसके पास जाओ, वो तुमको सब कुछ बताएगा। विक्रमादित्य गया, 10 कोस महात्मा देखा बैठा हुआ है, भोजन का समय है और अंगार होता न आग, वो उठा उठा के खा रहा है। अब बड़ा हैरान हुआ, वो जाके नम्रता से जो है हाथ जोड़ करके विनती किया कि आप मुझे बताएं पूर्व जन्म के बारे में, हमने कौन सा कर्म किया है जिसके कारण मुझे ये सारा राज्य मिला है। कहते मैं जानता तो हूँ, लेकिन ऐसा कर, यहाँ से 10 कोस पर एक और महात्मा है, तुम उससे जाके पूछ ले। 10 कोस पर गया जी, वो देखता है एक महात्मा बैठा है, भजन कर रहा है और धूल खा रहा है। स्वा होता है ना पंजाबी में, स्वा बोलते ना धूल को, अजी वो स्वा खा रहा है। तो बड़ा हैरान होते हैं, कैसा महात्मा? कहते महात्मा जी आप बताएं कि पूर्व जन्म में हमने कौन सी भक्ति किया, क्या किया जिसके कारण हमें राजपाट में। कहते हैं, तुम जानना ही चाहते हैं तो ऐसा करो, यहाँ से 10 कोस पर जाओ, वहाँ पर एक बच्ची है, वो सारा कुछ तुमको बताए। वो जी वहाँ पर राजा गया, देखता है एक बच्ची है, वो बैठी हुई है। महात्मा जब विक्रमादित्य गया वहाँ पर, बहुत नम्रता से धारण करके पूछता है कि हमने पूर्व जन्म में कौन सा कर्म किया था जिसके कारण। वहाँ पर वो बच्ची कहती है कि राजन, हम लोग इकट्ठे थे, मैं ही जो है एक आपको और वो दो महात्मा को मैंने दो देव रोटी जो है दान के रूप में दिया था। आप भी संत थे पूर्वजन्म में, वो जो दो महात्मा बैठे वो भी संत थे। मैं रोटी बना करके आप तीनों को दो दो रोटी दिया था। विष्णु भगवान ब्राह्मण का रूप धारण करके आपकी परीक्षा लेने के लिए आए तो एक महात्मा के पास आए, वो कहते हैं भिक्षाम दे ही, मुझे रोटी दो, भूखा हूं मैं 3 दिन से। कहते हैं आधा रोटी तुम भी ले ले। आधा रोटी देने लगा, कहते हैं आधा रोटी से मेरा भूख नहीं जाएगा, और दे दो। कहते हैं एक ले लो, एक मैं खा लेता हूँ, एक तुम खा लो। कहते हैं इससे भी भूख नहीं जाएगी। कहते हैं चलो डेढ़ ले लो। कहते नहीं डेढ़ से भी भूख नहीं जाएगा। तो कहता है फिर तुम जो है आग खाओ, तुम्हारी भूख नहीं मिटेगी तो तू आग खाओगे। तो उसने जो है उस ब्राह्मण ने उसको ये बोला कि तू आग खाने के लिए मुझको खांदा तो तू भी आग खा। तो कहते उसने जो है ऐसा उसको श्राप दे दिया, तो जिसके कारण देखो मैं इस जन्म में आग खा रहा हूं। आगे जाकर के दूसरा महात्मा के पास वो ब्राह्मण गया, उससे भी मांगा रोटी। तो पहले आधी दिया, फिर एक दिया, फिर डेढ़ दिया। कहता इससे भूख नहीं देना, हमें सारा दे दो। तो कहता है कि सारा दे करके क्या मैं धूल खाऊं जो है? वो कहता है तथास्तु, धूल ही खाओ। तो वो धूल देखो खा रहा है। कहता है वो जो ब्राह्मण था वो तुम्हारे पास आया। जब तुम्हारे पास आया और कहता है भिक्षाम दे ही, तो तुमने कहा ब्राह्मण देवता बैठ जाओ, आप बैठ जाओ, मैं घर से आता हूँ। घर जाकर के आपने एक चादर बिछाया, लोटा में पानी लेकर के हाथ धुलाया, और धुला करके आपने बोला कि यही दो रोटी है, हैं? और हमारे पास प्रेम है और एक लोटा जल है, इसके अलावे कहो तो मैं प्राण भी दे दूं, जो आपको चाहिए। आपने थाली में दो रोटी और जल देके प्रेम से हाथ जोड़ करके आपने ये बोले। तो वो जो ब्राह्मण था, विष्णु भगवान जो ब्राह्मण का रूप धारण किया था, उसने आशीर्वाद दिया कि जाओ अगले जन्म में तुम चक्रवर्ती सम्राट बनोगे, राजा बनोगे, और तुम दाता बनोगे, लोगों को दिया करोगे, लोगों के दुख को दूर करोगे, बहुत धर्मात्मा राजा बनोगे, जिसके पुण्य के कारण जो है सो तुमने जो है ऐसे राज को पाया है। साहेब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज यहाँ पर उपदेश करते हैं, जह प्रसाद तेरी पत्र है, गुर प्रसाद नानक जस का है। सात संगत जी, जिसकी कृपा से ये सब कुछ तुझे मिला है, ये जो हंसी खुशी आनंद, ये सब उसकी कृपा है। नहीं तो इस दुनिया में मुस्कुराता कौन है, खुशी कहाँ है, सारे मुंह लटकाए रखते हैं। ये जो तुम्हारे अंदर खुशियां हैं ना, ये प्रभु की कृपा है। या कोई दीवाना हंसे, या जिसे तू तौफीक दे, या कोई दीवाना हंसे या जिसे तू तौफीक दे, वरना इस जहां में रहकर मुस्कुरा सकता है कौन? यह तो प्रभु की कृपा है, प्रसाद है, और जिसको प्रभु की कृपा प्रसाद मिल जाए उसका लोक सुखिए परलोक सुहेले, नानक हर प्रभु आपे मिले। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।